તારીખ 16/8/1995 શ્રી મદ્રાજચંદ્ર પત્રાંક 449 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 154
સંકલિત પત્ર ઉસમે 7 પુષ્કળ કે સ્વાધ્યાય હો ગયા હે અંતિમ પરિયા આત્મા પુષ્કળ કા હે ઉસમે સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ હે आज यह आत्मा प्रसाद लिख रहे हैं, आत्मा पुरस्कार लिख रहे हैं। तो एक आठ पुरस्कार लिखा, उसका मतलब यह है कि कितना लिखना, क्या लिखना, वो आगे से निश्चय नहीं किया था। सहज उदय भाव चला, जितने का विकल्प चला, जो भी विकल्प आया लिखा गया। एक पुरस्कार लिखने के बाद विकल्प चालू रहा तो बंद नहीं किया। ऐसे लगातार 8 पुरस्कार तक विकल्प चालू रहा तो बंद नहीं किया। सहज बंद हो जाए अलग बात है, सहज चालू रह जाए अलग बात है। जैसे ज्ञानी राग को करते नहीं, वैसे ज्ञानी राग को बंद भी करते नहीं। ठीक है, ज्ञानी जैसे राग को चालू करते नहीं, वैसे ज्ञानी राग को बंद भी नहीं करते हैं। इसका ये सबूत है 8 पुरस्कार है वो। क्यों? राग का करना धरना ही नहीं रहा, तुम चालू नहीं करते और राग स्वतः स्वयं अपने आप चालू होते हैं तो बंद भी अपने आप ही हो जाएगा। हम इसमें क्यों माथा लगाए? यानी राग करने की जब हमें उपाधि नहीं है तो बंद करने की भी उपाधि हमें क्यों? पुरुषार्थ का रोल अपने आप में वेग से, संवेग से प्रवाहित रहना। ऐसे रहते हुए भी कभी विकल्प अपने आप चालू हो जाता है, कभी अपने आप बंद हो जाता है। तो उसकी प्रवृत्ति जो हो सो हो जाने, विकल्प की प्रवृत्ति विकल्प जाने, हम हमारे काम में लगे हैं। ये बात जरूर है, ऐसे ज्ञानियों को विकल्प मर्यादित होते हैं, अमर्यादित नहीं होते हैं। ये सीमित कषाय है, लिमिटेड है, कुछ लिमिट से आगे वो जा सकता नहीं है। अपने आप में अपना लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा। इस विषय में एक गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण बहुत बढ़िया है। परमात्मा सार में वो बात लिया है कि ज्ञानी बाहर आते हैं, उपयोग भी बाहर जाता है, विकल्प भी बाहर जाता है, लेकिन कुछ जगह रख के बाहर आते हैं, अवकाश रख के बाहर आते हैं। वो काठियावाड़ी भाषा में बोलते थे, केटली मोकराश राखे ने बाहर आवे थे। ठीक કાઠિયાવાડી ભાષામાં બોલતા ને, નાની બહાર આવે છે ખરા કે, પણ કેટલીક ભોકળાશ રાખીને બહાર આવે છે, એ તો પૂરેપૂરા બહાર નથી આવતા, પૂરેપૂરા બહાર નહીં આવે, કુછ સીમિત મર્યાદિત પરિસ્થિતિ મેં વો બહાર આતે હૈ, બાકી અંદર રહે જાતે હૈ। તો જો વંશ બહાર આતા હૈ વો એસા નિરંગલ આઉટ ઓફ કંટ્રોલ बैलेंस खो करके कभी प्रवृत्ति नहीं करता हर हालत में। बहुत अच्छा है लिखा है, जिस स्टाइल से लिखा है, जिस टोन है, अंतर ध्वनि है, इसका बहुत बढ़िया है। बात ऊपर से सीधी सादी लगे लेकिन उसमें गंभीरता बहुत है।
बाहुबली का दोनों का एग्जाम्पल है कि दोनों बहुत लड़े आपस में, बैलेंस का क्या करें?
नहीं, वो अंदर भीतर में जो चलता था नहीं लड़ने का, उसका बल ज्यादा था, लड़ाई के परिणाम भी थे और नहीं लड़ने के भी परिणाम थे, यानी लड़ाई के निषेधात्मक परिणाम भी थे और इसका सबूत था, इसका सबूत वो था कि लड़ते लड़ते ही उन्होंने दीक्षा ले ली। कितना जोर से निषेध आया बाहुबली जी को, मुष्टि ऐसे उगामी, बाहुबल उसका नाम ही बाहुबल था, उतने बाहु में बल था कि इसकी मुट्ठी अगर किसी को भी लग गई उसका आयु पूरा खत्म, एक मुष्टि बस है, जिसको लगी वो जमीन दस्त हो जाएगा, फिर बाद में खड़ा नहीं हो सकता, उतना बलवान थे, सामने कोई भी हो मुट्ठी तो ऐसे अदर कर दिया उगामी। अंदर का निषेध जोर से चलता था, उसका विजय हो गया, लड़ाई के परिणाम हार गए पर उसका निषेध करने वाले परिणाम जीत गए। ये मुट्ठी भरत जी को मारने के बजाय अपने सिर पे आई, सिर का नोच कर लिया, दीक्षा लेकर के उसी वक्त जंगल में चले गए और मुनि दशा में आ गए, तो उनके परिणाम उसी वक्त सीमित थे, इनका सबूत है, सबों को ऐसा ही होता है ज्ञानियों। आज यह आठवां पोस्ट कार्ड लिखते हैं, उसमें सूक्ष्मता क्या है, एक और सूक्ष्म बात है उसमें, तो उपयोग जो बाहर जाता है ज्ञानी का भी जाता है अज्ञानी का भी जाता है, दोनों में अंतर क्या है? मोटी मोटी बात में लोग ऐसा समझते हैं कि ज्ञानी की अंतर परिणति अलग है और बाहर में तो अज्ञानी जैसा ही उसका परिणाम चलता है, ऐसा नहीं है। अंतर परिणति जो है वो तो अपने परमात्मा स्वरूप के साथ जुड़ी हुई है, संलग्न है, अभेद है, लेकिन जो अंश बाहर निकला वो अंश भी जिस निमित्त के प्रति, जिस संयोग के प्रति या वियोग के प्रति जाता है वो भी एकत्व को प्राप्त नहीं करता है, तो भिन्न रहता है वहां भी। अंतर परिणति का रिफर्केशन है तो बाह्यंश पर उतना जोरदार है कि वहां भी वो भिन्न रहता है, एकत्व नहीं करता, तो एकत्व नहीं होने से उसकी मर्यादा हो गई। कौन सी मर्यादा हुई? कि एकत्व नहीं हुआ ऐसी मर्यादा हुई, अगर एकत्व हो जाता तो अमर्यादित हो जाता, ऐसा ज्ञानी को नहीं होता है। देखो आगे क्या लिखते हैं,
जो मार जाता है वो चाहे संकल्प हो चाहे
दोष आ जाता, ज्ञान का और मिथ्यात्व का, दोनों मिथ्यात्व का दोष आ जाता, तो ज्ञान दशा रहती नहीं, च्युत हो जाते।
ज्ञानी भिन्न भी वर्तते हैं, परंतु जो चारित्रम और संबंधित जो हमारे उनमें जो कमजोरी बढ़ती है उससे रिलेटेड उनको क्या परिणाम होते हैं?
कुछ में सहज चलता है तो चलता है, अंतर पुरुषार्थ भी सहज चलता है और जो कमजोरी है उनको जानते हैं, कमजोरी को कमजोरी के रूप में जानते हैं, क्या परिणाम चलता है? कमजोरी को कमजोरी के रूप में जानते हैं, वो दोष है उसको दोष के रूप में जानते हैं, दोष को गुण के रूप में जानते नहीं, दोष का बताओ कभी करते नहीं। बता दें कि दोष हुआ लेकिन हमारा अभिप्राय नहीं था, वो बात वहां नहीं आती, अभिप्राय नहीं था लेकिन दोष को दोष जानेंगे तो उसका निषेध होएगा और दोष का स्वीकार आ जाएगा कि दोष है।
दोष का
दोष का पैरामीटर है कि जो गुण है वो दोष नहीं, दोष है वो गुण नहीं। दोष का पैरामीटर वो है कि दोष है वो आकुलता को उत्पन्न करता है, जबकि गुण निराकुलता को उत्पन्न करता है। गुण में शांति है, दोष में अशांति है।
सत्पुरुष योग में नहीं रहने के कारण जो आकुलता होती है,
हाँ,
उसको क्या दोष के खाते में बताइए, किसके खाते में?
इस भूमिका में ये अवश्य होता है, इस भूमिका में वो अवश्य होता है। और एक न्याय से वो गुण है और एक न्याय से अवगुण भी है।
प्रश्न क्यों?
प्रश्न वो है, थोड़ा विषयांतर होता है लेकिन वो प्रश्न चला ही है तो ले लेते हैं कि कोई मुमुक्षु को सत्पुरुष के वियोग में दुख और आकुलता होती है, वो इस मुमुक्षु का गुण है या दोष है? प्रश्न उतना है ना?
उतना भी, और उससे रिलेटेड उसका प्रयास चलता है, वो वियोग की दूरी को करने के लिए कोई प्रयास उसका चलता है, और उसको दोष के खाते में बताएंगे कि गुण के खाते में बताएंगे?
प्रश्न
भी च्यूत हो सकता हो और नहीं भी हो, जिसमें बाह्य विवेक हो सकता है च्यूत भी हुआ हो और बाह्य विवेक हो सकता है च्यूत नहीं भी हुआ हो।
अच्छा, प्रश्न आगे और लंबाता है कि वो जो वियोग है वो उसकी दूरी है वो मिटाने के प्रयास में भी आता है, और उस प्रयास मिटाने के प्रयास में वो मिटाने का जो प्रयास है उस प्रयास में कभी विवेक होता है कभी अविवेक भी होता है। अब इनको गुण कहे या दोष कहे,
अभिप्राय का भूल का उसमें क्या रोल है? अभिप्राय का भूल का उसमें क्या रोल है?
अभिप्राय का भूल का भी उसमें क्या रोल है? आगे का प्रश्न और एक एक प्रश्न को हाथ में लेना कि किसी मुमुक्षु को वियोग का दुख लगता है तो उस भूमिका का वो गुण है, एक न्याय से एक दृष्टिकोण से वो गुण है। क्यों क्यों गुण है? कि इसी कारण से उसको आगे जाकर के लाभ होने वाला है, इस दृष्टिकोण से
आगे जाके लाभ होने वाला है कि वर्तमान में भी उसको लाभ हो रहा है?
वर्तमान में भी लाभ हो रहा है और आगे जाके भी लाभ होने वाला है। वर्तमान में तो निर्मलता आएगी और आगे जाकर के उसको ज्ञानी पुरुष का संयोग होगा, ये लाभ उसको मिलेगा। लेकिन वो भी एक नया कर्म बन तो करता ही है, पुण्य बंद करता है, और नया कर्म बंद करने से उनको आगे संयोग मिलेगा, वो तो कर्म बंद उदय में आएगा तो ज्ञानी का संयोग उसको मिलेगा। तो जो बंध भाव है वो अबंध भाव नहीं है, इसलिए वो दोष भी है। बंध को तो गुण कहेंगे नहीं पारमार्थिक दृष्टिकोण से, तात्विक दृष्टिकोण से, तत्व दृष्टि से वो दोष है, लेकिन इस भूमिका का वो गुण है, इसलिए वो गुण भी है और दोष भी है। अगर एकांत गुण होता तो उसमें उसको शांति रहती, अशांति नहीं रहती। जबकि किसी को वियोग में इतनी अशांति होती है, इतनी अशांति होती है कि खुद बर्दाश्त नहीं कर सके, इतनी भी अशांति होती है, तीव्र मात्रा में भी अशांति हो जाती है। लेकिन ये हो जाता है इसकी बात है, करने की बात नहीं है। उतना ख्याल में रखना है कि ये हो जाता है, करने की चीज नहीं होती है कि हम करें ऐसा, वो बात नहीं है। सहज होता है, हो जाता है, जो करने को जाता है वो कृत्रिम प्रयास है और वो अयथार्थ है, यथार्थ नहीं है। एक बात, अब आगे का प्रश्न क्या है?
प्रयास की बात।
उसमें उसके वो प्रयास में लगता है, तो प्रयास से लघु गाय
विवेक भी कभी हो जाता है, कभी अविवेक
भी हो जाता है। तो क्या है, तो प्रयास में लगता है, तो प्रयास तो होगा ही होगा। जो वियोग का दुख तीव्र मात्रा में होगा तो बाहर में वियोग मिटाने का प्रयास होगा ही होगा। अब वो विवेक चूकता है क्या, विवेक नहीं चूकता है? तो विवेक नहीं चूकता है उसमें तो कोई दो मत नहीं है कि वो ठीक नहीं है।
ये तो वो उसका प्रयोजन का पकड़ है कि अपकड़ है। जो बाह्य विवेक को नहीं चूक करता है तो वो उसके प्रयोजन का अपकड़ को साबित करता है कि प्रयोजन की पकड़ को साबित करता है?
नहीं, प्रयोजन की पकड़ में रहकर भी विवेक होता है और प्रयोजन की पकड़ में रहकर के भी अविवेक भी होता है। दोनों बात बन सकती है, बनती भी है। तो प्रयोजन की पकड़ में विवेक रहता है तो बात में तो कोई तकलीफ वाली दो मत वाली बात नहीं है कि वो ठीक नहीं है। लेकिन अविवेक होता है तो वहां वो ठीक है या ठीक नहीं है उसका विचार अवश्य अवश्य करना चाहिए। अब अविवेक होता है तो अविवेक में एक प्रकार नहीं होता, अविवेक के प्रकार अनेक है। कौन सा अविवेक होता है जिसका हम विचार करें? अविवेक की मर्यादा कहाँ तक है, ये सवाल है इधर। अगर वो कुछ इतनी सीमा में है कि जिसमें लौकिक भाव नहीं रहता है वहां तक तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अविवेक में कोई कसाई बढ़ जाए, आज्ञाकारिता छूट जाए या कुछ लिमिट क्रॉस करके कसाई बढ़ जाए कि जिसे खुद डिप्रेशन में आ जाए, ऐसे प्रकार के जो अविवेक है वो दोष है, वो गुण नहीं है।
खुद डिप्रेशन में आए तो
खुद डिप्रेशन में आता है या कभी आज्ञाकारिता छूट जाती है या कभी उतना तीव्र मात्रा में कसाई हो जाता है, जिससे उससे वापिस मुड़ना तकलीफ हो जाए, विकल्प बहुत बढ़ जाए, विकल्प इसका चलता ही रहे, विकल्प बढ़ता ही रहे, ये सब इस प्रकार के जो गड़बड़ हो जाती है अविवेक के कारण से, या किसी के व्यक्तिगत राग द्वेष में आ जाए, प्रेजुडाइस में आ जाए, इतने प्रकार ऐसे ऐसे प्रकार के जो अविवेक है वो अविवेक अभिप्राय को भी हानि पहुंचा देगा, कभी प्रयोजन की पकड़ को भी कभी हानि पहुंचा देगा और कभी बहुत नीचे परिणाम गिर जाएंगे। तो ये डेंजर जोन है, इस डेंजर जोन में हमें प्रवेश नहीं करना चाहिए, उतना थोड़ा ख्याल रखने का है। तो वहां अगर अभिप्राय ठीक रहा तो जी फिर विवेक में आ जाएगा, आज्ञाकारिता में आ जाएगा, उनके जो परिणाम है वो वापिस आ जाएगा, मुड़ जाएगा, फिर शांति से विचार करेगा, वो होगा ये सब होगा। अगर अभिप्राय में गड़बड़ हो गई, फिर इतना अविवेक हो गया कि अभिप्राय में भी गड़बड़ हो गई, तो फिर अपना दोष का वो स्वीकार नहीं करेगा। मैं जो मुझे जो लगता है वही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, दूसरा होना ही नहीं चाहिए, हर हालत में यही बात होना चाहिए, ये बात हो जाएगी। आज यह आठवां पोस्टकार्ड लिखते हैं, ये आप सभी को, ये सभी पोस्टकार्ड सभी जिज्ञासु भाइयों को बार बार विचार करने के अर्थ या विचारने के लिए लिखा गया है। लिखे हैं नहीं है, लिखाए हैं,
ચાર શબ્દ પ્રયોગ એ લખાયા છે, લખ્યા છે એમ નથી લખ્યો. ક્યાં કહો ને એવું કે સહેજ એ કરતા ભાવ છે, એવું લિખી જ ગયા છો, લિખી ગયા, અમને લિખાવું બાદ નહીં, લિખ ગયા છો, લિખ ગયા. ચિત એસા ઉદય વાલા કભી વર્તતા હૈ, કભી હમારા ચિત્ત, હમારા આત્મા નહીં, ક્યા મન કે વિકલ્પ, કભી એસા ઉદય મેં ભી વર્ત લેતા હૈ તો વર્ત લેતા હૈ. उस वक्त भी हमारी आत्मा उसमें नहीं वर्तती है, चित्त वर्तता है, वर्तने दो. इससे भी हम भिन्न हैं, ऐसा उदय भाव से भी हम तो भिन्न हैं. तो जिससे हम भिन्न हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जिससे हम भिन्न हैं उसमें हमारा अस्तित्व नहीं है, और अस्तित्व नहीं है इसलिए तो भिन्न है. और जिसमें हमारा अस्तित्व नहीं है उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे पुद्गल परमाणु में, शरीर आदि के पुद्गल परमाणु में हमारा अस्तित्व नहीं है तो इसका कारण हम क्या कर सकते हैं. शरीर बीमार होता है तो क्या हम रोक सकते हैं क्या, बाल काले में से सफेद होते हैं उसको हम रोक सकते हैं क्या, एक बाल को भी नहीं, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही नहीं है तो उसमें हम कुछ कर सके वो बात रहती नहीं. ऐसे ये चित्त विकल्प हमसे हम भिन्न है तो उसमें भी हम कुछ कर सके वो बात नहीं रहती. कभी ऐसा वर्तता है, ठीक है, जानते हैं कि वर्तता है. ये जो अंश है जो बाह्य वर्तता है ये हमारे स्वास्थ्य को, अव्याबाध स्थिति को जैसे के तैसे रहने पर ही वर्तता है, उसमें वो बाधा कर सकता नहीं है. ऐसे परिणामों की असर हमारी अंतर परिणति पर नहीं आती कभी, तो अव्याबाध स्थिति है और स्वास्थ्य जैसा का तैसा ही है हमारा, तो तंदुरुस्ती में कोई बिगाड़ नहीं है. हाँ उतना जरूर है कि उस अंश को हानि पहुंचती है, हमारी तंदुरुस्ती के कारण, हमारे पुरुषार्थ के कारण बाह्यांश को हानि पहुंचती है, लेकिन बाह्यांश के कारण हमारी अंतर परिणति को हानि नहीं पहुंचती है. क्या कि मेजर फोर्स होता है वही प्रिवेल करता है, उसका ही काम होता है, बलवान है वही जीतता है, निर्बल तो मार खाता ही है. तो ये जो बाहर गया चित्त वो मार खाता है, वो कमजोर होता जाता है, प्रतिक्षण वही कमजोर होता जाएगा. चित ऐसा उदय वाला कभी वर्तता है, आज वैसा अनुक्रम से उदय होने से यह उदय अनुसार लिखा है. आज ऐसा अनुक्रम से उदय होने से, अनुक्रम से आज पोस्टकार्ड लिखा क्रमशः, ऐसा उदय होने से उस उदय के अनुसार ये सब लिखा है. सहज सहज ये बात लिखने का विकल्प आया, लिखा गया और ऐसा आत्मा पुरस्कार ये चल गया.
यानी कि राग में इतनी ताकत है तो ज्ञान में कितनी ताकत है, यानी कि उदय भाव में इतनी ताकत है,
कितनी ताकत है,
मैं नहीं कर सकता
है,
आदि करने के लिए शब्द नहीं है.
ज्ञानी के उदय भाव में उतना निमित्तत्व है के दूसरे का उदय को तोड़ करके स्वरूप स्थिति में ले जाए। ये उपदेश तो उदय निमित्त चलता है ना, उपदेश देने का विकल्प आता है, विकल्प आता है उस निमित्त पड़ता है दूसरे की योग्यता वाले को, पर उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो फिर मूल चीज में कितनी ताकत होगी, उसे ज्ञान में कितनी ताकत होगी और उसके आत्मा में कितनी ताकत होगी, तो अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, वो अचिंत्य शक्ति वाला स्वयं ही देव है। उसकी शक्ति का तो हम चिंतन से अंदाज भी नहीं लगा सकते, ऐसा है। आज ऐसा अनुक्रम से उदय होने से तो उदय के अनुसार लिखा है, हम भी सत्संग की और निवृत्ति की कामना रखते हैं, तो फिर आप सबों को ये रखना योग्य है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्या है, ऐसी स्थिति में भी हम सत्संग की कामना रखते हैं और प्रवृत्ति से निवृत्त होने की कामना रखते हैं, तो प्रवृत्ति में हमें रस नहीं, प्रवृत्ति में तो कंटाला आता है, रस तो आएगा ही कहां से, तो इसे निवृत्त होने की हमें कामना है, सत्संग में रहने की भी हमारी भावना है। जब हमारी ऐसी भावना है तो आप सबको ऐसा होना को कहने की जरूरत नहीं है, कि आपको भी सत्संग की भावना होनी चाहिए और प्रवृत्ति से निवृत्त होने की भावना होनी चाहिए। कृपालु देव ने एक प्रश्न उठाया है, एक पत्र में प्रश्न उठाया है कि जिसको प्रवृत्ति करने की जरूरत नहीं हो, क्या इतना आ चुका हो, पुण्य योग इतना हो कि जिसको प्रवृत्ति नहीं करे तो भी कोई तकलीफ नहीं होती है, उनको अपने आप को पूछ लेना है, किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं, अपने आप को पूछ लेना कि तुम क्यों करता है अभी, हाँ अब तुम क्यों करता है, क्या कारण है। हमारे क्लाइंट थे, व्यापारी थे, बहुत दरिद्र अवस्था में से बहुत बड़ा श्रीमंत हो गया, मुंबई में भी इंडस्ट्री थी, इंदौर में भी इंडस्ट्री थी, पर तो आखाथाना के लिए कमाई करने का प्रश्न था। उनके पिताजी थे, वो आठाने का सर्विस देता था कि किसी को स्टैंप पेपर ऊपर लिखावट करना हो तो आठाना लेकर के लिख दें दस्तावेज, उसमें से करोड़ों रुपया हो गया। उनको से हम पूछे कभी तो थोड़ा मेंटल तकलीफ में आ गया, बहुत विकल्प ज्यादा करता था, बहुत चंचल था, छोटी उम्र में बहुत पैसा हो गया तो बहुत आगे बढ़ने लगा विकल्प में, मेंटल थोड़ा तकलीफ हो गया, आंख पर असर आ गए, अंधा सा जैसा हो गया, डॉक्टर ने बोला कि उसको धंधा बंद कराओ, तो 24 घंटा इसको एक पीछे इतना पागल होकर के परिणमन करता है तो उसका फिजिकल इफेक्ट चालू हो गया है, ये अंधा हो जाएगा, पागल हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसको कमरे में बंद कर दिया, वो भी अंदर है कमरे में, लाइट नहीं रखने का। तो इनको पूछा आप क्यों करते हो, इतने ज्यादा पैसे हो गए, सब कुछ है आपके पास, तो क्या अब तो पैसे के लिए नहीं करते हैं, पैसे तो बहुत आगे है, पैसा ज्यादा आने का आवे तो ठीक वो भी नहीं है, लेकिन बैनर के लिए करते हैं। मुंबई में भी हमारा एक बैनर है, हमारा नाम चलता है हमारे मार्केट में, क्या हमारे मार्केट में हमारा नाम चलता है, वो नाम के लिए बैनर के लिए करते हैं आजकल, पैसे के लिए नहीं करते हैं। से पागलपन होता है, तो कोई ऐसा होता है तो कहते हैं कि फिर क्यों करता है तुम, मेहनत के लिए करता हो या पेट भरने के लिए करता हो, क्या करते हो, बात क्या है? ये महंगा मनुष्य आयु है, उसका दुरुपयोग हो रहा है और उस दुरुपयोग का फल से अधोगति में जाना होगा, गुरुजन को कहते थे। रिजर्वेशन यहाँ हो जाएगा सिक्योर, वहां की सीट सिक्योर यहाँ हो जाएगी, बुकिंग इधर होता है और जर्नी का तो एक ही समय होता है, सात राज्यों जाना होता है, मनुष्य लोक में से ऊपर जाते हैं, और कोई जगह से तो ऊपर जाया नहीं जाता, मध्य लोक में से जाते हैं, सात राज्यों का एक समय में जाना होता है, तो इतना कम से कम बुकिंग तो करवा लो, ये हो सकता है। और बुकिंग करवाने के लिए कि क्यू में खड़े रह जाऊं, लाइन तो पकड़ लो कम से कम,
लाइन तोड़ के आएंगे,
ये हो सकता है,
लाइन में नहीं खड़े रहेंगे, लाइन तोड़ के आएंगे।
हाँ, अच्छी बात है, इतना तूफान मचाना हो तो मचाओ,
मचाओ,
मचाओ, लाइन तोड़ के भी आगे निकल जाए। क्या कहते हैं कि आप सबों को भी सत्संग की कामना और निवृत्ति की कामना रखना योग्य है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हम अल्पारंभ को और अल्प परिग्रह को व्यवहार में बैठे हुए भी प्रारब्ध निवृत्ति रूप से चाहते हैं। वाह, क्या लिखते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा आरंभ अल्प हो, हमारा परिग्रह भी अल्प हो, हम ज्यादा परिग्रह भी नहीं चाहते, हम ज्यादा आरंभ करना भी, व्यवसाय करना भी नहीं चाहते, व्यवहार में बैठे हैं फिर भी हम ऐसा चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम निवृत्त होकर के कहीं जंगल में चले गए हैं, बैठे हैं दुकान पे, बंबई से तो चिट्ठी लिखते हैं, व्यवहार में बैठे हुए हैं फिर भी चाहते हैं कि हमारा आरंभ परिग्रह अल्प हो जाए, और वो भी प्रारब्ध निवृत्ति रूप से चाहते हैं, ऐसा हमारा प्रारब्ध बन जाए, क्योंकि प्रवृत्ति भी प्रारब्ध है और निवृत्ति भी प्रारब्ध है। प्रवृत्ति भी प्रारब्ध है और निवृत्ति भी प्रारब्ध है, तो हमारा प्रारब्ध निवृत्ति का आ जाए ऐसा हम चाहते हैं, प्रवृत्ति का प्रारब्ध को नहीं चाहेंगे, क्योंकि दोनों प्रारब्ध ही है, इसलिए हम प्रारब्ध को में फिरफार इस तरह से नहीं करते हैं जैसे लोग करते हैं कर्तृत्व भाव से। हमारा आत्म प्रत्यय पुरुषार्थ उतना बढ़ जाए, तो आत्म प्रत्यय पुरुषार्थ के कारण में हमारे संचित कर्म में जो प्रवृत्ति के परमाणु है वो निवृत्ति के हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं। मेरे नैसर्गिक रूप से निवृत्ति आ जाए, ऐसा नहीं है कि हमने जो प्रारब्ध बांधा है उस प्रारब्ध को हम भोगना नहीं चाहते हैं, ये तो हमारा अपराध है। जो भी प्रारब्ध है वो तो हमारे अपराध से बंधा हुआ है, और प्रमाणिकता से हमने जो कर्जा किया है वो चुकाना है हमको, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, ये तो हमारी प्रमाणिकता है। परंतु हम चाहते हैं कि हमारा पुरुषार्थ इतना बढ़े कि सहज हम उनको निवृत्ति का योग आ जाए और हमारे आत्म कल्याण में हम अधिक तेजी से आगे बढ़े, ऐसा हम चाहते हैं। महत आरंभ और महत परिग्रह में नहीं पढ़ते, खुद चला करके आरंभ परिग्रह को बढ़ाते नहीं है, ये 26 साल की उम्र है, युवा अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं और आरंभ परिग्रह का निषेध आता है। देखो, वरना इस उम्र में तो महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है। तो कहते हैं कि महत आरंभ और महत परिग्रह में हम पढ़ते नहीं। 26 साल 25 साल की उम्र में जब कारोबार बढ़ गया और साथ साथ वैराग्य भी बढ़ गया, उदासीनता भी बढ़ गई, तो निवृत्ति के विचार जोर करने लग गए थे उनको। क्या होने लगा? निवृत्ति के विचार जोर करने लग गए। और 26 साल की उम्र में तो बहुत तेजी से निवृत्ति के विचार आए हैं उनको। तो इसलिए इसके पहले जो काम बढ़ाया था वो बढ़ाया था, अब कोई नया काम वो बढ़ाते नहीं थे, सबको कम करते जाते, संक्षेप करते जाते थे, बढ़ाते नहीं थे। 20 साल की उम्र में व्यवसाय में ज्वाइन हुए, 5 साल में तो कटौती करने लग गए, 5 ईयर्स प्लानिंग पूरा हो गया उनका, अब कुछ आगे नहीं करना है, अब कैसे निवृत्त हो जाए, यही दृष्टिकोण से वो प्रवृत्ति करते थे। महत आरंभ और महत परिग्रह में पढ़ते नहीं है, तो फिर आपको ऐसा वर्तना चाहिए उसमें कोई संशय कर्तव्य नहीं है। जब हम यही कर रहे हैं तो हमारे जो हमारे जीवन को देख करके स्वयं आप लोगों को भी बोध लेना चाहिए क्या हमको, आप लोगों को क्या करना है। कि उपदेश तो देव दिया है, फिर भी कृपालु देव का जीवन स्वयं बोध स्वरूप था, उसका तो परिणमन ही स्वयं बोध स्वरूप था। उस परिणमन को देखते हुए मुमुक्षु को भी ऐसा इसका अनुकरण और अनुसरण करना चाहिए। फिलहाल समागम होने का योग का नियमित समय लिख सके ऐसा सूझता नहीं है। देखो उसमें भी कितनी सहजता है कि जो परिणाम में है वो लिख दिया है कि आगे हम कहाँ निवृत्ति लेकर के, कम निवृत्ति लेकर के सत्समागम में आएंगे, तो भी लिखने का अंदर में सुस्ता नहीं है कि क्या लिखे, तो नहीं सुस्ता है ऐसा लिख दिया। अंदाज लिख सकते थे तो अंदाज लिखने का सुस्ता नहीं था, तो सुस्ता नहीं है ऐसा लिख दिया। जैसे कांच के गिलास में पानी भरा है, कांच भी कलरलेस है और पानी भी कलरलेस, फिर भी पता चलता है कि पानी उतना भरा है। ऐसे ज्ञानी का परिणमन निर्मल 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 पानी जैसा, कांच जैसा होता, जैसा है वैसा दिखता है, दिखना चाहे तो जैसा है वैसा दिखता है। यही विनंती है, ऐसा करके इस पत्र को समाप्त किया है। संक्षेप में 10 मिनट है अपने पास, थोड़ा 8 दिन का स्वाध्याय चला है तो उसको संक्षेप में ले लें। पहले पोस्ट कार्ड में अपनी दशा लिखी है और ज्ञान दशा ऐसी बताई है कि अग्नि जैसा अनेक पदार्थ को जला देता है लेकिन गर्म पानी नहीं जला सकता, कितना भी गर्म हो, वैसे ज्ञानी की दशा कभी विषय कषाय के परिणाम वाली होती है, उदय भाव में व्यवसाय आदि होता है लेकिन तो अधोगति में जाए ऐसे परिणाम कभी होता नहीं है। करुणानुयोग के हिसाब से बताएं तो सम्यक दृष्टि को 41 प्रकृति का बंध नहीं होता। करुणानुयोग की भाषा में बंध व्युच्छित्ति कहते हैं उसको, बंध व्युच्छित्ति, बंध का व्यवच्छेद की क्रिया, उसको बंध व्युच्छित्ति कहते हैं। 41 प्रकार का बंध नहीं होता, कोई 41 प्रकार के कर्म प्रकृति सब अशुभ प्रकृति है। जैसे उसको नरक का नारक का आयु नहीं बंधेगा तो नारक के नाम कर्म की सभी प्रकृति का बंध नहीं होगा। तिरियंज के आयु नहीं बंधेगा तो तिरियंज के नाम प्रकृति का भी बंध नहीं होगा, ना मैंने शरीर के लगती प्रकृति। ऐसे स्त्री वेद का या नपुंसक वेद का बंध नहीं होगा तो उसको उस प्रकार के नाम कर्म या शरीर आदि नहीं मिलेंगे। देवलोक में जाएंगे लेकिन देवी नहीं बनेगा, देव बनेगा। यहाँ स्त्री पर्याय हो तो भी वहां पुरुष वेद में आएगा। ऐसे 41 प्रकृति का बंध का व्यवच्छेद हो जाता है, क्योंकि ये सभी बंध अशुभ भाव में होता है और ज्ञानी को अशुभ भाव होता है लेकिन अशुभ भाव में ऐसा आयु बंध कभी नहीं होता है। अशुभ भाव होता है, अशुभ भाव में आयु बंध नहीं होगा। ऐसे 41 प्रकृति मैंने एक तृतीयांश 1/3 विच्छेद हो गया प्रथम मोक्ष मार्ग के प्रथम गुण स्थान में। ऐसे तो 148 प्रकृति है लेकिन 27 प्रकृति का बंध तो सम्यक दृष्टि को होता है, मिथ्या दृष्टि को तो होता ही नहीं। वो तो सम्यक तो के बाद ही जो शुभराग के परिणाम होते हैं उसमें होता है। 121 में से 41 का विच्छेद हो गया, बाकी जो 80 प्रकृति रही उसके लिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कितने गुण स्थान बाकी रहे। 80 प्रकृति में इतने लंबे चौड़े गुण स्थान है, चतुर्थ गुण स्थान में 41 का छेद उड़ाया। इतना जोर से और ताकत से प्रवेश होता है। अभी कोई गुण स्थान में 7 जाती है, कोई में 8 जाती है, कोई में 9 जाती है, कोई में 10 जाती है, कोई में 6 जाती है, ऐसे करके सभी गुण स्थान में बंध का व्यच्छेद होकर के निष्कर्म दशा रूप मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसको निर्वाण पद कहते हैं, मोक्ष दशा कहते हैं। ज्ञानी को ऐसा कर्म बंध कभी नहीं होता और उनको निवृत्ति क्षेत्र का स्मरण, सत्संग का स्मरण बार बार आता है। दूसरे पोस्ट कार्ड में लिखते हैं कि मुमुक्षुओं को कल्याण में जो आड़े आने वाले प्रतिबंध रूप, मैंने अपने आत्म कल्याण में आड़े आते हैं ऐसे जो कारण है उसका बार बार विचार करना चाहिए कि परिणाम कारण रूप परिणाम है अपने परिणाम, और उसको मिटाने के लिए प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए। और वो कैसे होता है उसका भी समाधान उसी दूसरे पुस्तकार्ड में दिया है। तीसरे में लिखते हैं कि सत्संग तो मुख्य साधन है, अगर सत्संग का अंतराय रहता हो तो जो भी उदय में प्रवृत्ति करना करने का समय होता है उसमें उदासीन भाव से प्रवृत्ति करना, तीव्र रस लेकर के कोई प्रवृत्ति मत करिए। उतने कम से कम सावधानी रखनी है। चौथे पुरस्कार में वो बात लिया है, लोक संगना, ओग संगना और असत्संग से तत्व ज्ञान का अभ्यास करने वाले को भी आत्मस्वरूप का निश्चय करने के विषय में कल्पना बन जाती है और वो उन मार्ग में चढ़ जाता है। इसलिए कि तीनों को मिटाना, लोक संज्ञा, ओक संज्ञा और असत्संग को छोड़ना और जो असत शास्त्र है, असत गुरु है और जो धार्मिक असत क्रियाएं हैं, असत क्रिया इसलिए कही है कि जिस क्रिया करते हुए भी आत्मा का कल्याण नहीं होता है, केवल अल्प सुख बंद होता है और कल्याण कुछ नहीं होता है, इसको छोड़ देना। और जहां तक ये बात नहीं छूटेगी, असत शास्त्र असदगुरु वाली बात बहुत भयंकर है, ये बात नहीं छूटेगी तो उसको आत्मस्वरूप का पहचान होना अत्यंत दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए तो उसको छोड़ देना और जहां तक वो नहीं छूटेगा वहां तक ज्ञानी पुरुष को प्रकट आत्मस्वरूप को बताने वाले जो वचन है उसकी असर भी आत्मा पर पहुंचेगी नहीं, उतना आवरण बना रहेगा। ये सबसे बड़ा नुकसान है कि ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, प्रकट आत्मस्वरूप को कहने वाले उनके वचन भी मिलते हैं और हमारे आत्मा पर कोई असर नहीं आती है। इसका कारण यह है कि हम असत शास्त्र और असत गुरु और असत क्रिया में कुछ न कुछ रूप में लगे हुए रहे हैं और इस कारण से मुमुक्षु जीव को ऐसा निश्चय करना चाहिए कि जिसको आत्मस्वरूप प्राप्त है, प्रकट है, वही वो दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए समर्थ होते हैं, उसके सिवा कोई आत्मस्वरूप को बता सकते नहीं है। फिर भी कोई विद्वान से, कोई पंडित से आत्मा को जिसने जाना नहीं है और जिसने उसका कल्याण का उपाय भी मालूम नहीं है, उस पास से हमने जान लिया, समझ लिया, ऐसी कल्पना मुमुक्षु को कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा दोष है कि जिससे वो सही ज्ञानी पुरुष के पास उसका पहुंचना संभव नहीं होगा। फिर समागम का अंतराय के विषय में स्पष्टीकरण दिया है कि हमारा समागम नहीं बनता है तो आप लोगों को सत्संग नियमित रूप से करना और निवृत्ति क्षेत्र में रहकर के भी सत्संग ज्यादा से ज्यादा करना। निवृत्ति क्षेत्र की बात इसलिए लिखते हैं कि प्रवृत्ति क्षेत्र में हमारे जो स्वाध्याय आदि सत्संग आदि की जो प्रवृत्ति है उसमें विक्षेप बना रहता है। हमारे पास समय आयु का बहुत मर्यादित है और अनिश्चित है, बहुत अल्प है और थोड़ा भी है वो अनिश्चित है। इसलिए इस ये सत्संग में प्राप्त बोध इसकी असर तेजी से हो है उसमें निवृत्ति क्षेत्र बहुत उपकारी होता है, प्रवृत्ति क्षेत्र उसमें विक्षेप करता है। इसलिए निवृत्ति क्षेत्र में जाने का उपदेश भी यहाँ पर दिया है। सात पुष्कर में संक्षेप में इतनी बातें आई है विस्तार से और मुमुक्षु को ये बहुत से उपयोगी, बहुत काम में आने वाली चीजें हैं इस पत्र में जो है। आपका आठवां पुष्कर का तो स्वाध्याय भी हुआ है यहाँ तक।